السلام علیکم. یہ پارٹ 8 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل, پیشکش محمد اظہر, مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 8. تو پھر کیا کیا جائے؟ کرنل ہیمن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. جیسا آپ کا حکم ہو جناب, میجر ٹام نے سادہ سے لہجے میں کہا. تم جانتے ہو کہ جب مجھے کچھ شک ہو تو وہ بلا وجہ نہیں ہوتا, اور شک کا کانٹا ہمیشہ میرے حلق میں اٹکا رہتا ہے. جب تک وہ کانٹا میرے حلق سے نکل نہ جائے مجھے چین نہیں آتا. تم نے اس آئل ٹینکر کی مکمل چیکنگ بھی کی ہے اور اس کی رپورٹ بھی بنا لی ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے اس ٹینکر سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے, اور اب جب تک میں اس خطرے کے احساس کو ختم نہیں کر لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا. اس لیے تم اس ٹینکر کو آگ لگا دو, اسے جلا کر خاک تر کر دو, نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری, کرنل ہیمن نے کہا. آگ؟ او لیکن سر, اگر ہم نے ٹینکر کو آگ لگائی تو ڈارٹ آئل کمپنی کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اس ٹینکر کو کیوں آگ لگائی گئی ہے؟ ہمیں کوئی نہ کوئی کاز تو دینا ہوگا, ورنہ ڈارٹ آئل کمپنی ہمارے خلاف ہمیشہ کی طرح پھر شور مچانا شروع کر دے گی. ڈائل آئل کمپنی کا تیل یہاں حکومتی معاہدے کے تحت آتا ہے. اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا ایک ٹینکر جل گیا ہے تو وہ اس پر سخت رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں, میجر ٹام نے جلدی سے کہا. اس بات کی تم فکر نہ کرو, کاز میں خود بنا لوں گا. اس طرف دشوار گزار راستے ہیں اور یہاں کھائیوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. تم ٹینکر کو یہاں سے دور لے جا کر آگ لگا دو اور کسی گہری کھائی میں پھینک دو. ہم اسے ایک اتفاقیہ حادثہ شو کر دیں گے اور میری بنائی ہوئی رپورٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر ڈارٹ آئل کمپنی والوں نے شور مچایا تو میں انہیں خود ہی سنبھال لوں گا. ان کے روزانہ یہاں 50 آئل ٹینکر آتے ہیں. ایک آدھ آئل ٹینکر ضائع ہو جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور ویسے بھی یہ انشورڈ ہوتے ہیں, کرنل ہیمن نے کہا. تو میجر ٹام نے سمجھ جانے والے اندازے میں سر ہلا دیا. آگ لگائے بغیر اسے کھائی میں مت پھینکنا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا شک اس آگ میں ہی جل کر راکھ ہو جائے. اس ٹینکر میں جو بھی فالٹ ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, ورنہ خواہ مخواہ میں ہیڈک کا شکار بنا رہوں گا, کرنل ہیمر نے کہا. اور میجر ٹام نے اس بات میں سر ہلا دیا. کرنل ہیمر نے ایک بار پھر چاروں طرف گھوم کر ٹینکر کو دیکھا اور پھر وہ جیپ کی طرف بڑھ گیا. جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو واپس چلنے کے لیے کہا. تو ڈرائیور نے جیپ موڑی اور تیزی سے اسی طرف لیتا چلا گیا جس طرف سے وہ آیا تھا. کرنل ہیمر کے جانے کے بعد میجر ٹام نے ایک طویل سانس لیا. اس نے وہاں موجود چاروں فوجیوں کو واپس کیمپ کی طرف جانے کا کہا, تو وہ اسے سلوٹ کر کے ٹیلے کی طرف بھاگتے چلے گئے جس کی دوسری طرف اسٹاک ایریا اور پھر 20 کیمپ تھا. ان کے جانے کے بعد میجر ٹام ٹینکر کی طرف بڑھا اور ٹینکر کے اگلے حصے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا. اس نے جیب سے اس آئل ٹینکر کی چابی نکالی اور چابی اگنیشن میں لگا کر گھما دی. دوسرے لمحے انجن اسٹارٹ ہوا تو میجر ٹام نے گیئر لگایا اور اس نے ٹینکر آگے بڑھا دیا. کچی پکی سڑک پر ٹینکر اچھلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. میجر ٹام نہایت ماہرانہ انداز میں آئل ٹینکر چلا رہا تھا. دو تین پہاڑی موڑ مڑنے کے بعد وہ آئل ٹینکر لے کر ایک بڑی پہاڑی کی دوسری طرف آ گیا جہاں ایک بڑی اور انتہائی گہری کھائی موجود تھی. کھائی 200 فٹ سے زیادہ گہری تھی اور نیچے ہر طرف ٹھوس چٹانیں دکھائی دے رہی تھی. میجر ٹام نے کھائی سے تقریباً 100 فٹ کے فاصلے پر آئل ٹینکر روک لیا اور دروازہ کھول کر اچھل کر باہر آ گیا. اس نے آئل ٹینکر کو نیوٹرل کر کے بریک ہک खींच ली थी, जिससे आइस टैंकर वहीं रुक गया था। वरना रास्ता जिस तरह नसीब में खाई की तरफ जा रहा था, आयल टैंकर का रुकना मुश्किल ही था। मेजर टॉम ने आयल टैंकर से निकलकर जेब से एक छोटा सा बम निकाला और इसका एक बटन प्रेस करके इसे आयल टैंकर के पिछले हिस्से में लगा दिया। बम टैंकर से किसी मकनातीस की तरफ तरह से चिपक गया था। बम लगाकर मेजर टॉम वापस पलटा और उसने फ्रंट की तरफ आकर ड्राइविंग सीट की तरफ वाला दरवाजा खोला और पायदान के ऊपर आ गया। इसने पायदान पर खड़े खड़े अंदर की तरफ झुककर इमरजेंसी ब्रेक ऑफ की तो अचानक ऑयल टैंकर तेजी से हरकत में आ गया। जैसे ही ऑयल टैंकर हरकत में आया, मेजर टॉम फौरन उछलकर पायदान से नीचे आ गया। ऑयल टैंकर चूंकि न्यूट्रल था, इसलिए वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। 100 फीट की नशीब की तरफ जाते हुए ऑयल टैंकर की रफ्तार बेहद बढ़ गई थी और फिर खाई के किनारे पर पहुंचे ही ऑयल टैंकर एक लम्हे के लिए जैसे किसी जंबो जेट की तरह हवा में उठता चला गया। दूसरे लम्हे ऑयल टैंकर फ्रंट झुका और वो निहायत तेजी से खाई में गिरता नजर आया। मेजर टॉम ने ऑयल टैंकर खाई की तरफ जाते देखकर जेब से फौरन एक रिमोट कंट्रोल निकाल लिया था और इस रिमोट कंट्रोल के एक बटन पर इसने अंगूठा रख दिया था और फिर जैसे ही ऑयल टैंकर खाई में गिरा, इसने अंगूठे से बटन दबा दिया। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और खाई से आग का तूफान सा बुलंद होता हुआ दिखाई दिया। आग के शोलों में ऑयल टैंकर के टुकड़े भी शामिल थे, जो तेजी से हवा में उछलकर ऊपर जाकर दोबारा खाई में गिरते दिखाई दे रहे थे। ऑयल टैंकर को मेजर टॉम ने रिमोट कंट्रोल बम से खाई की गहराई में जाने से पहले ही ब्लास्ट कर दिया था। मेजर टॉम कर्नल हैमर को बखूबी जानता था। इसे मालूम था कि जब वो कर्नल हैमर को इस ऑयल टैंकर के बारे में बताएगा तो कर्नल हैमर से ऐसा ही कुछ करने का हुक्म देगा, इसलिए वो एक रिमोट कंट्रोल बम और रिमोट कंट्रोल पहले ही अपने साथ ले आया था। ऑयल टैंकर को धमाके से उड़ाकर इसने गहरी खाई में फेंक दिया था। अब इस टैंकर में जो भी शक वाली बात थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। मेजर टॉम ने मुस्कुराते हुए रिमोट कंट्रोल जेब में डाला और फिर मुड़कर वो तेज तेज चलता हुआ वापस बीस कैंप की तरफ बढ़ता चला गया। बड़ी सख्त चेकिंग है इनकी, एक एक टैंकर को ये लोग 20-20 बार चेक कर रहे हैं, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इनका ऑयल टैंकर चेक पोस्ट से गुजरकर 2 मील दूर आकर एक बार फिर रुक गया था और फिर इन्हें एक तरफ हर तरफ से भारी बूटों और फौजियों की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। बाहर से आने वाली आवाजों से इन्हें साफ मालूम हो रहा था कि इन ऑयल टैंकरों के एक एक पुर्जे को बारीक बारीक चेक किया जा रहा था और बार बार टैंकरों में मौजूद तेल को भी चेक किया जा रहा था। इन्हें वहां रुके हुए 2 घंटों से ज्यादा वक्त हो गया था, लेकिन बाहर मौजूद फौजियों की चेकिंग थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टैंकरों के चूंकि रेजिस से चेकिंग मुकम्मल कर ली गई थी, इसलिए इमरान ने इन्हें बोलने की इजाजत दे दी थी, इसलिए वो बाहर की आवाजें सुनने के साथ साथ आपस में बातें भी कर रहे थे। हाँ, इसराइल में शक्की मिजाज इंसानों की कोई कमी नहीं है, बल्कि शक मिजाजी में इसराइल पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। इस मुल्क के लोग जूते भी पहनने से पहले इसे 100-100 बार झाड़ कर देखते हैं कि इनमें कोई सांप या बिच्छू छुपा हुआ ना हो। इसी तरह इसराइलों को मुस्लिम ममालिक से आने वाले हर शख्स और इनकी हर सामान पर भी शक रहता है, इसलिए वो इस वक्त तक जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रखते हैं जब तक इनका यकीनी तौर पर शक खत्म ना हो जाए, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मुस्लिम ममालिक से तो इन यहूदियों को वैसे ही खुदा वास्ते के बैर रहता है, तनवीर ने जैसे मुंह बनाकर कहा। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल में तो अब तक इनकी तमाम चेकिंग पूरी हो चुकी है। क्या ये अब तक मुतमईन नहीं हुए हैं? कैप्टन शकीर ने कहा। इनका इत्मीनान तब होगा जब ये तमाम टैंकरों में से तेल का एक एक कतरा निकालकर चेक नहीं कर लेते। इमरान ने बेजारी से कहा, अब तो हद हो गई है, थकावट से मेरा बुरा हाल हो रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी बाहर निकलूं और कर्नल हेमर समेत इन तमाम शकी मिजाज यहूदी फौजियों को भून कर रख दूं। तनवीर ने गुस्से लहजे में कहा। एक मिनट, अचानक इमरान ने कहा, जैसे वो कुछ और सुन रहा हो। तनवीर खामोश हो गया। इसी लम्हे इन्हें बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी, क्या यही वो ऑयल टैंकर है जिस पर मेजर टॉम को शक हो रहा है कि इस टैंकर में तेल के साथ कुछ और भी मौजूद है? एक आवाज ने इन सबको बुरी तरह से चौंकने पर मजबूर कर दिया। हाँ, यही है वो टैंकर, दूसरी आवाज सुनाई दी, लेकिन मेजर टॉम को शक क्या है? इसने जो रिपोर्ट बनाई है इसके मुताबिक तो इस टैंकर में सिर्फ तेल ही मौजूद है। तेल का मायार और उसकी मिकदार भी पूरी है। रिपोर्ट में मेजर टॉम ने ये भी लिखा है कि तेल में कोई खामी भी नहीं है और इसने थर्मोलेट और अल्ट्रासाउंड सिस्टम समेत चार मुख्तलिफ रेजिस से भी अंदर से टैंकर चेक किया है। टैंकर में एक छोटी सी कंकरी भी मौजूद नहीं है। फिर इसके शक की क्या वजह हो सकती है? पहली आवाज ने कहा, पता नहीं इन्हें किस बात का शक है। मैंने इनके मुंह से सिर्फ इतना सुना था कि वो तेल बाहर निकाल कर चेक करते हैं तो तेल इन्हें मयारी दिखाई देता है, लेकिन थर्मोलेट से जब टैंकर की चेकिंग की जाती है तो सिस्टम पर एक ऐसा काशन भी मिलता है जिसे इस टैंकर में कोई ठोस चीज भी मौजूद हो, दूसरी आवाज ने कहा। और इनकी बातें सुनकर वो सब परेशान हो गए। ये क्या कह रहे हैं इमरान साहब, क्या मेजर टॉम को हमारे टैंकर पर शक हुआ है? सिद्दीकी ने खदरे परेशान लहजे में कहा। रुको, मुझे इनकी बातें सुनने दो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो सिद्दीकी भी खामोश हो गया। अब मेजर टॉम का क्या इरादा है? वो इस टैंकर को कैसे चेक करेगा? इसने हमारे सामने तमाम साइंसी और मशीनी आलात से तो इस टैंकर को चेक कर लिया है, पहले बोलने वाले की आवाज सुनाई दी। मेजर टॉम अब इस टैंकर को स्टार रॉड से चेक करेगा जिसकी मदद से वो तेल के अंदर मौजूद छोटे से छोटे कंकर को भी चेक करके बाहर निकाल ले लाएगा, दूसरी आवाज ने कहा। और इन सब की दिल बेख्तियार धड़कना शुरू हो गए। हाँ, अगर कंपनी ने तेल की मिकदार बढ़ाने के लिए टैंकर में कुछ रखा हुआ होगा तो इसके बारे में स्टार रॉड से वाकई पता चल जाएगा, पहली आवाज आई। मेजर टॉम को तो शकी मिजाज ही हैं, इससे ज्यादा शकी मिजाज कर्नल हेमर हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हैं। मेजर टॉम ने कर्नल हेमर को अगर इस टैंकर के बारे में बताया तो कर्नल हेमर अपना शक खत्म करने के लिए इस टैंकर को ही उड़ा देगा। वो इस बात का कतई ख्याल नहीं करेगा कि इस टैंकर में क्या है और ये किस कंपनी का है। वो शक को जड़ से ही मिटा देने का कायल है, दूसरी आवाज ने कहा। और कर्नल हेमर के वहाँ आने का सुनकर न सिर्फ इमरान बल्कि इसके तमाम साथियों के चेहरों पर परेशानी आ गई। हाँ, ये तो है, कर्नल हेमर किसी झंझट में पड़ने के बजाय काम तमाम कर देने के आदि हैं। टैंकर के पॉजिटिव रिपोर्ट्स होने के बावजूद अगर इन्हें इस टैंकर पर शक हुआ तो वो या तो इस टैंकर को किसी खाई में गिराने का हुक्म दे देंगे या इस टैंकर को किसी वीरान जगह ले जाकर आग लगा दी जाएगी ताकि ना शक रहे और ना शक की कोई गुंजाइश रहे, पहली आवाज ने हंस कर जवाब दिया। अब चलो, मेजर टॉम ने अगर हमें इस टैंकर के पास देख लिया तो ख्वा मख्वा हमारी शामत आ जाएगी, दूसरी आवाज ने कहा। और फिर इन्हें कदमों की आवाज से सुनाई दी जो टैंकर से दूर हट रही थी। ये क्या हो रहा है इमरान, तुमने सुना वो क्या कह रहे थे? जिसका खतरा था वो हमारे सर पर आ गया है, कर्नल हेमर यही हैं और मेजर टॉम को शायद इसी टैंकर पर शक हुआ है जिसमें हम मौजूद हैं, जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैंने अपने कान बंद कर रखे थे, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। इमरान साहब, हम खतरे में हैं, सफदर ने इवान का मजाया मूड देखकर संजीदगी से कहा, तुम भूल रहे हो प्यारे, हम खतरे में नहीं, एक टैंकर में हैं और वो भी तेल से भरे हुए टैंकर में, इमरान ने इसी अंदाज में कहा। मजाक मत करो, इन्हें शक हो गया है कि इस टैंकर में तेल के साथ ठोस शक्ल में कुछ और भी मौजूद हैं और वो इस टैंकर को किसी स्टार रॉड से चेक करना चाहते हैं, जिससे इन्हें हमारी मौजूदगी का फौरन इल्म हो जाएगा, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। फौरन तो नहीं, इसे हमारा पता लगने में थोड़ी देर तो लगेगी। हाँ, अगर इसके पास चिराग का जिन हुआ तो वो जरूर इसे हमारे बारे में फौरन बता देगा। इमरान भला इतनी आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। जरूरी तो नहीं है कि हमने जो आवाजें सुनी हैं वो इसी टैंकर के बारे में हो जिनमें हम मौजूद हैं, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। क्या मतलब, इन सब ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि हम जिस ऑयल टैंकर में मौजूद हैं वो 20 कैम से अलग किसी स्टॉक एरिया में मौजूद है और बाकी टैंकर भी हमारे इर्द गिर्द ही खड़े किए गए हैं जो हमारे दाएं बाएं दोनों तरफ मौजूद हैं, कैप्टन शकीर ने इन्हें समझाते हुए कहा। ओ तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो दोनों जो बातें कर रहे थे वो हमारे दाएं या बाएं मौजूद किसी दूसरे टैंकर के बारे में थे, सफदर ने चौंकते हुए कहा। हाँ ऐसा हो सकता है, क्यों इमरान साहब, कैप्टन शकीर ने कहा। ये महज तुम्हारा ख्याल है, तुमने इनकी बातचीत ध्यान से नहीं सुनी। इनमें से एक साफ साफ बता रहा था कि इस ऑयल टैंकर में थर्मोलेट सिस्टम से इन्हें किसी ठोस चीज की मौजूदगी का पता चल रहा है। ठोस हालत में या हम ही हो सकते हैं। दूसरे टैंकरों में किसी ठोस चीज का क्या काम, जूलिया ने कहा। तुम ठोस हालत में हो, हैरत है, मैं तो आज तक यही समझता रहा था कि तुम साफ साफ्ट हो, बेहद साफ्ट, इमरान ने कहा और वो सब हंस पड़े। इमरान साहब के अंदाज में कोई फिक्र वाली बात नजर नहीं आ रही थी। अगर कोई खतरा होता तो इसका एहसास सबसे पहले इन्हें ही होता और ये अब तक कुछ न कुछ जरूर कर चुके होते। कैप्टन शकील की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी और वो सब देखते तवील सांस से लेकर रह गए। कैप्टन शकील की ये बात वाकई इनके दिलों को लगी थी कि इमरान का इत्मीनान बिला वजह नहीं हो सकता था, वरना वाकई इमरान अब तक कुछ न कुछ कर चुका होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग जिस टैंकर के बारे में बातें कर रहे थे इस टैंकर में भी इमरान साहब ने कुछ कर रखा है ताकि इनका ध्यान इस टैंकर की तरफ रहे और वो इस टैंकर पर तवज्जो न दे सके जिसमें हम सब मौजूद हैं, कैप्टन शकील ने कहा। क्यों इमरान साहब, क्या कैप्टन शकील ठीक कह रहा है, सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। ठीक ही कह रहा होगा, इससे भला कोई बात छुपी रह सकती है, मैं कुछ भी कर लूं, किसी और को पता चले या ना चले लेकिन इसे जरूर पता चल जाता है। मैं तो सुलेमान से कहता हूँ कि इसकी नजरें बिल्ली की नजरें हैं, इससे कहीं भी रकम छुपा कर रख लो, कमबख्त बन आंखों से भी वो जगह ढूंढ निकालता है। और कैप्टन शकील, अब मैं इसकी नजरों को क्या कहूँ, जो सीधी मेरे दिमाग में छुपी हुई बातों के बारे में भी जान लेती है। मुझे तो डर है किसी दिन ये मेरे दिमाग में तन्वी और जूलिया की बातों के बारे में भी ना जान ले। जिस दिन ऐसा हुआ इस दिन तन्वीर अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां मेरे सर में ही उतार देगा, इमरान ने जैसे मुंह बनाते हुए कहा और वो सब हंसने लगे। कैप्टन शकील, आपका दिमाग नहीं पड़ता ये भी जहानत में किसी तरह आपसे कम नहीं है। इससे पहले कि तन्वीर या जूलिया कुछ कहते सफदर ने फौरन बात बदलते हुए कहा, अगर ये इतना ही जहीन है तो इसे कहो कि 3 सेकंड में 330 का पूरा पहाड़ा सुनाए, इमरान ने कहा और वो एक मरतबा फिर हंस दिए। इसी लम्हे इन्हें बाहर से भारी जूतों की आवाज सुनाई दी और वो खामोश हो गए। इस टैंकर को फ्री वे की तरफ ले जाओ, मैं जाकर कर्नल हैमर को बताता हूँ, वो शायद इस टैंकर को खुद चेक करेंगे, इन्हें एक भारी आवाज सुनाई दी। यस मेजर टॉम, एक और आवाज सुनाई दी, अपने साथ 2-3 मुसल्ला साथियों को भी ले जाना, जब तक मैं या कर्नल साहब न आए, किसी को इस टैंकर के करीब छटकने भी मत देना, पहली आवाज वाले मेजर टॉम ने कहा। यस सर, दूसरी आवाज ने कहा। कर्नल हेमा इस टैंकर को एक नजर जरूर देखेंगे और अगर इनका मेटर से इस टैंकर पर शक खत्म ना हुआ तो वो इस टैंकर को कहीं नहीं जाने देंगे बल्कि इसे वहीं तबाह कर देंगे। मेजर टॉम की इन्हें बड़बड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। ये सब सुनकर इनके चेहरों पर एक बार फिर संजीदगी उभर आई थी, क्योंकि ये जरूरी नहीं था कि कैप्टन शकीर की कही हुई बात सच साबित हो जाए। इन्हें इस टैंकर पर भी तो शक हो सकता था जिसमें वो सब छुपे हुए थे। फिर जब इन्हें बाहर किसी दूसरे टैंकर की इंजन की स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो इनके चेहरों पर इत्मीनान आ गया, गोया कैप्टन शकीर की बात दुरुस्त साबित हो गई थी। मेजर टॉम का शक किसी दूसरे टैंकर पर ही था जिसे वो वहां से निकाल कर किसी अलग मकाम की तरफ ले जा रहे थे। हैरत है आखिर इन्हें दूसरे टैंकर पर शक क्यों हुआ है कि इसमें कोई ठोस चीज मौजूद है, सिद्दीकी ने बड़बड़ाते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। ये तो अब इमरान साहब ही बताएंगे कि इन्होंने इस टैंकर के साथ ऐसा क्या किया है कि वो इस टैंकर पर इस कदर शक कर रहे हैं और इसे यहाँ से निकाल कर ले गए हैं, खावर ने कहा। वाकई इमरान साहब, बातें बताएं तो सही कि वो लोग किसी दूसरे टैंकर पर इस कदर शक क्यों कर रहे हैं, सफदर ने पूछा। कुछ नहीं भाई, मैंने एक टैंकर में इस टाइम गैस बनाने वाला एक स्टोन डाल दिया था। इस टाइम स्टोन चूने के पत्थर जैसा एक पत्थर ही होता है जो तेल या पानी में घुल कर इस टाइम गैस बनाना शुरू कर देता है। जब तक इस टाइम गैस टैंकर या किसी ट्यूब के अंदर रहती है इसकी मौजूदगी का पता चलता रहता है, और अगर इस टाइम गैस मिले तेल या पानी को बाहर निकाल लिया जाए तो इसमें से इस टाइम गैस का असर खत्म हो जाता है। जब मैंने इस टाइम स्टोन टैंकर में डाला था तो वो फौरन ही तेल में घुल गया था और स्टोन से बनने वाली गैस तेल में घुल गई थी। अब जब मेजर टॉम या कर्नल हेमर इस तेल को टैंकर से बाहर निकाल कर चेक करते हैं तो इन्हें तेल खालिश और हर मिलावट से पाक नजर आता है, जबकि टैंकर में अगर वो कोई आलर डालकर चेक करें तो इन्हें यही नजर आएगा कि तेल मिलावट शुदा है और उसमें ठोस पिन मौजूद है या फिर टैंकर में तेल के साथ कोई ठोस चीज मौजूद है, इमरान ने इन्हें तफसील से बताते हुए कहा। ओ, और आपने ये सब इसीलिए किया था ताकि इनकी तवज्जो इस टैंकर की तरफ मबजूर रहे, सफदर ने कहा। हाँ, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो एक एक करके इन टैंकरों को अंदर आकर भी चेक कर सकते थे। जब इन्हें दूसरे टैंकरों की बजाय किसी एक टैंकर पर शक हो तो इनकी तवज्जो इसी तरफ रह सकती है और यही हुआ है, इमरान ने जवाब दिया और वो सब एक तवील सांस लेकर रह गए। इमरान वाकई इनकी तौक्के से कहीं बढ़कर ज़हीन था जो आने वाले खतरात की बू पहले से ही सूंघकर इनसे बचने का कोई न कोई सदे बाप कर रखता था। क्या अब वाकई कर्नल हेमा इस टैंकर को महज शक की बुनियाद पर ही तबाह कर देगा, जूलिया ने कहा। हाँ, शक और वहम का इलाज तो बेचारे हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। कर्नल हेमर के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ वो वाकई शकी मिजाज आदमी है और इसकी यही कोशिश होती है कि शक की वजह को इसकी जड़ समेत ही खत्म कर दिया जाए, इमरान ने जवाब दिया। खैर, जो होना था वो तो हो गया, अब हमें इस तेल में और कब तक रहना पड़ेगा, तनवीर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। क्यों, तुम्हें भूख लग रही है क्या? अगर भूख लगी है तो तेल में आग लगाओ, तेल में तुम्हें खाने के लिए हमारा भुना हुआ गोश्त मिल जाएगा, अलबत्ता पीने के लिए पानी तुम्हें बाहर से ही लाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तनवीर ने गुस्से लहजे में कहा। तो क्या तुम अपने आप से बातें कर रहे हो? अरे बाप रे, मैंने तो सुना है जो अपने आप से बातें करता है वो नीम पागल होता है और जो नीम पागल होता है इससे दूर दूर ही रहना चाहिए वरना वो खामखा काट खाने को दौड़ता है, इमरान भला आसानी से कहां बाज आने वाला था और तनवीर हुर्रा कर रह गया। इसी लम्हे इन्हें एक जीप के रुकने की आवाज सुनाई दी और फिर इन्होंने बेशुमार एड़ियां बजने की आवाजें सुनी। एड़ियां बजने का मतलब था कि वहां कोई बड़ा ऑफिसर ही आया था। सर ये है डार्ट ऑयल कंपनी के बाकी 19 टैंकर। एक फौजी की मौदबाना आवाज सुनाई दी। क्या मेजर टॉम ने अपनी निगरानी में इन तमाम टैंकरों की चेकिंग कराई है? एक गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। यस सर, इन्होंने खुद भी चेकिंग की थी और फिर इन्होंने इन तमाम टैंकरों को ओके करार दे दिया था। इनमें से किसी टैंकर में सिवाय तेल के और कुछ नहीं है, पहली आवाज ने जवाब देते हुए कहा। फिर भी जब तक मेरी तसल्ली ना होगी मैं इनमें से किसी एक टैंकर को भी इसराइल नहीं जाने दूंगा, ऑफिसर के बड़े कड़क लहजे में कहा। यस सर, जैसे आपका हुक्म सर, पहली आवाज ने कहा। फिर बाहर से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे एक बार फिर वहां मौजूद टैंकरों को थोक बजाकर चेक किया जा रहा हो। जॉस्टन तुम एक काम करो। कुछ देर बाद इन्हें ऑफिसर की आवाज सुनाई दी जो शायद घूम फिर कर फिर इसी तरफ वापस आ गया था। यस सर, हुकुम सर, पहली आवाज ने कहा जिसका नाम जॉस्टन था। मैं छठी हिस्स 20 नंबर के इस टैंकर के बारे में भी शक का इजहार कर रही है कि इस टैंकर में तेल के साथ कुछ और भी मौजूद है, ऑफिसर ने कहा। और इसके बाद सुनकर इमरान की परेशानी पर लातादा शिकने आ गए क्योंकि ऑफिसर ने जिस 20 नंबर के टैंकर की बात की थी ये वही टैंकर था जिसमें वो अपने साथियों के साथ मौजूद था। मैं समझा नहीं सर, जॉस्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं समझे तो मैं क्या करूं नॉनसेंस, मुझे इस टैंकर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। मैंने तमाम टैंकरों को चेक किया है, दूसरे टैंकरों की बनिस्बत मुझे 20 नंबर के इस टैंकर पर शक हो रहा है। मैंने इस टैंकर को दूसरे टैंकरों के साथ थोक बजा कर देखा है, बाकी टैंकरों की आवाजें कुछ और किस्म की हैं, जबकि इस टैंकर को जब मैं थोक बजा कर चेक करता हूँ तो इसकी आवाज बदली हुई सी मालूम हो रही है। ऐसा तब ही मुमकिन होता है जब टैंकर में तेल के साथ कुछ और भी मौजूद हो, ऑफिसर ने कहा। ओ और क्या हो सकता है जनाब, इस टैंकर में जॉस्टन की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। मैं नहीं जानता, बहरहाल अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेजर टॉम को मैंने जिस टैंकर को तबाह करने का हुक्म दिया था इसमें वाकई कुछ नहीं था, लेकिन इस टैंकर की आवाज जो कुछ भी है इसी टैंकर में ही है। तुम इस टैंकर को यहाँ से फौरन निकलवाओ और इसे फ्रीवे की तरफ ले जाओ। मेजर टॉम अभी वहीं होगा, इससे कहना कि वो इस टैंकर को भी स्टार अलॉट से चेक करे, अगर अंदर कुछ ना मिले तो वो टैंकर यहाँ वापस ले आए, वरना इस टैंकर को भी आग लगाकर किसी गहरी खाई में धकेल दो, ऑफिसर कहता चला गया। यस सर, ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म सर, जॉस्टन ने कहा और फिर इन्हें तेज तेज चलते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। शायद ऑफिसर और जॉस्टन वापस जा रहे थे। लो अब ऑफिसर जो यकीनन कर्नल हैमर हैं को भी किसी टैंकर पर शक हो गया है, जूलिया ने जैसे मुंह बनाते हुए कहा। इस बार इसे किसी दूसरे टैंकर पर नहीं बल्कि इसी टैंकर पर शक हुआ है जिसमें हम मौजूद हैं, इमरान ने कहा और वो सब चौंक पड़े। इस टैंकर पर? ओ क्या इस टैंकर का नंबर 20 है, सफदर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ हम 20 नंबर वाले टैंकर में ही मौजूद हैं, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा और इसका जवाब सुनकर इन सबके चेहरों पर तशवीश के साए उभर आए। ओ अगर मेजर टॉम ने टैंकर को स्टार रोड से चेक किया तो इससे क्या होगा, खावर ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। हम पकड़े जाएंगे और क्या होगा, स्टार रोड से इन्हें आसानी से हमारे यहाँ मौजूद होने का इल्म हो जाएगा और फिर ये लोग इस टैंकर को भी यहाँ से ले जाएंगे। ये नॉवेल डेविल माइंड का बाकी हिस्सा पार्ट 9 में समाप्त फरमाएं।